हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 8 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये विश्राय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदयहं क्वचिन् नायत्र युष्मत् चरणं भुजसव महत्तमंतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेष मे वर। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगनमङ्गलमोहसां महत्ताम् अपि कौरव्या विद्धये कान्तिकनिष्कृतं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन छो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 8 जिसका शीर्षक है गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो हमने विदुर जी के प्रश्न सुने और अब मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने कल सुना के प्रारंभ करने से पहले वो पहले विदुर जी की प्रशंसा करते हैं कि आप तो शुद्ध भक्त हो और आपका वंश भी बहुत शुद्ध है जो भगवान की सेवा करता है और आपके ही प्रयास से भगवान की लीलाओं का बखान करने का और भी मुझे मौका मिल रहा है। और अब मैं श्रीमद् भागवतम पुराण से आरंभ करता हूँ जो भगवान ने ऋषियों से उन लोगों के लिए बताया जो इस संसार में थोड़ा सा सुख पाने के लिए इतना सारा दुख झेलते हैं, परिश्रम करते हैं। और अब मैं आपको वो भागवतम बताऊंगा जो भगवान संकर्षण जो भगवान वसुदेव का ध्यान कर रहे थे और संत कुमार आदि जब उनके पास आए थे तो उनके पूछने पर उन्होंने अपने नेत्र थोड़े से खोले और भगवान के बारे में कहना प्रारंभ। चतुष कुमार के साथ जो मुनिगण आए थे वो ऊपर के लोकों से नीचे आए थे और वो गंगा जी के माध्यम से स्नान करते करते आए थे क्योंकि उनकी जटाएं गीली थी और जिससे पता चलता था कि वो गंगा जी के माध्यम से आए हैं क्योंकि गंगा जी प्रत्येक लोक से गुजरती है। आगे बताते हैं कि संत कुमारों ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया वे भी स्नेह और प्रेम से और फिर भगवान संकर्षण के फणों पर लगी मणि चमकने लगी। और एक बहुत ही सुंदर बात हमने यहाँ पढ़ी कि अगर हम भी प्रेम और स्नेह के साथ भगवान के शब्दों को कहेंगे, उनका प्रवचन करेंगे तो तब ही श्रोता के हृदय को इफेक्ट करेंगे, तब ही उनमें शुद्धता आएगी और वह भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। उसके उपरांत आज हम श्लोक नंबर 8 से पढ़ रहे हैं। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सांख्यायन पारमहस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूति जगादसोस्मत् गुरवीन्विताय पराशरायात बृहस्पतिश्च सांख्यायन पारमहस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूति जगादसोस्मत् गुरवीन्विताय पराशरायात बृहस्पतिश्च। शब्दार्थ सांख्यायन यानी महर्षि सांख्यायन, पारमहस्य मुख्य मन समस्त आध्यात्मवादियों में प्रमुख, जो सांख्यायन मुनि है वो सारे आध्यात्मिक वादियों में प्रमुख हैं। विवक्षमाणम बांचते समय भगवत विभूति भगवान की महिमाएं जगाद अर्थात बतलाया स उन्होंने अस्मत मतलब मेरे गुरवे यानी गुरु को, कौन बता रहे, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मेरे गुरु को सांख्यायन मुनि ने बताया। अन्विताय अनुसरण किया, पराशराया पराशर मुनि के लिए, अथ बृहस्पति च बृहस्पति को भी। सांख्य अनुवाद देखिए, सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। यानी कि मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि मेरे गुरु जो पराशर मुनि हैं और बृहस्पति जी हैं वो दोनों कहाँ से सुनकर आए, सांख्यायन मुनि से ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करके आए हैं। आगे कहते हैं, प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्त्येन पुराणमाध्यम सोहं तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनोव्रताय। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्त्वेन परारमाध्यम सोहं तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनोव्रताय। प्रोवाच मह्यम, प्रोवाच मन फिर उन्होंने कहा, मह्यम मन मुझे, स उसे, दयालु अर्थात बहुत दयालु, उक्त उपयुक्त मुनि यानी मुनि, पुलस्त्येन पुलस्त्य मुनि से, पुराणम आद्यम यानी समस्त पुराणों में अग्रज, स अहम और वह भी मैं, तव यानी तुमसे, एतद यानी यह कथयामि कहता हूँ, वत्स हे पुत्र, श्रद्धालवे श्रद्धालु के लिए, नित्यम सदैव, अनुव्रताय अनुयायी के लिए। तो अभी मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रणीय पुराण यानी भागवतम सुनाया था। अब पराशर मुनि ने क्यों कि सांख्यायन मुनि से सुना और पुलस्त्य मुनि ने उनसे कहा कि कृपा करके आप मैत्रेय मुनि को सुनाओ, तो मैत्रेय मुनि ने मुझे सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सन्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी हो। तो यहाँ मैत्रेय मुनि कहते हैं, जिस तरह से मैंने अपने गुरुओं से सुना है उसी तरह एज इट इज मैं आपको बताने वाली हूँ। और जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसा एज इट इज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मतलब यह परंपरा से आ रहा है, इसमें कुछ ना जोड़ा जाता है ना तोड़ा जाता है, बस कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज जो है वो थोड़ा सा अगर कठिन होती है तो उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता है, बाकी ये एज इट इज है, भगवान से आया हुआ ज्ञान है। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं पुलस्य नामक महर्षि सारे असुरों के पिता हैं। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। महर्षि विशिष्ट मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दे। मुनियों के समुदाय में विशिष्ट के पद पर एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल न सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराण के महान वक्ता बनेंगे जो वेदों के पूरक ग्रंथ हैं। पराशर के कार्य से पुलस्त्य ने प्रशंसा की क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की, अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, पराशर मुनि के पिता जो हैं उनको असुरों ने मार दिया। फिर पराशर मुनि ने सोचा ये असुर है ना, वो तो हमेशा गंदा कार्य करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अभी मैं ऐसा यज्ञ करूँ। ये पराशर मुनि कौन थे जानते हो? ये पराशर मुनि वेद व्यास जी के पिता थे। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि सारे असुरों को जलाकर नष्ट कर दूंगा, लेकिन एक असुर के किए की सजा सबको देना ये तो सही नहीं था, और सारे असुरों को मार देते तो सबके साथ कितना बड़ा अत्याचार होता। तो विशिष्ट मुनि ने उनको समझाया कि ऐसी कृति तो ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं, तो आप इनको क्षमा कर दो। अब ये कितनी बड़ी बात है कि पिता के हत्यारे को क्षमा करना, लेकिन क्योंकि पराशर मुनि एक बहुत ही बड़े बड़े भक्त थे, संत थे, तो वो मुनि थे और उनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल था, उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को भी माफ़ कर दिया और यज्ञ करना भी बंद कर दिया। जब असुरों के पिता पुलस्य मुनि को पता चला तो पुलस्य को पता चला ना तो पुलस्य ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आपने क्योंकि बहुत ही बड़ा काम किया है, सबको क्षमा कर दिया है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में सारे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, बड़ा सा प्रचारक, सारे पुराणों को सबको बताएंगे, और जो मतलब पुराण जो पूरक ग्रंथ हैं यानी कि वेदों को पूर्ण करने वाले। तो पराशर के कार्य की पुलस्य ने प्रशंसा की क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की, अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों मनुष्यों तथा पशुओं को निगल जाते हैं, लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं? पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम पुराण के विषय में बतलाया क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रणीय है। मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर इसको सुनने के पात्र थे क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करते थे। अब ये श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोहम तवेतत् कथयावत्स श्रद्धा लवे नित्यम अनुव्रताय। दो चीजें होनी चाहिए जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, उनके अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है शत प्रतिशत परफेक्ट है, प्योर है, शुद्ध है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक अलग बात है, बहुत सारे प्रसंग ऐसे आएंगे जिसमें हमको ऐसा लगेगा कि ऐसा मतलब लेकिन हमको श्रद्धा का दामन जो है वो कस के पकड़ना है कि ये जो कुछ भी है, क्योंकि भगवान ने कहा है, इतने सारे ऋषियों ने इसका समर्थन किया है, तो ये श्रीमद् भागवतम श्रद्धा से सुनना है और नित्यम अनुव्रताय जो भी उपदेश हमको मिलेंगे उसका पालन करने का पूरा प्रयास करना है। तो ये दोनों क्वालिटीज जो थे विदुर जी में थे, श्रद्धा लवी नित्यम अनुव्रताय। तो इसलिए विदुर इसको सुनने के पात्र थे क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों के प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यासदेव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था, यानी कि व्यासदेव से पहले ही ये श्रीमद् भागवतम सुनाया तो जा रहा था लेकिन लिखा हुआ नहीं था, व्यासदेव ने खाली लिखा था इसको। तो तथाकथित इतिहास वेता पुराणों को केवल कुछ सौ वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से हैं। संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसे आज पुराणों को मानते ही नहीं हैं, स्पेशली भागवतम महापुराण के प्रमाण को ही स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं वेद है ना, वेदों से आप जानो, पुराणों से रियल ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम जो है वो जितने भी ग्रंथ हैं उनका राजा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं किंग ऑफ द लिटरेचर। ये भागवतम महापुराण है, ये समस्त ग्रंथ राज है समस्त ग्रंथों का, इसलिए इसमें जो लिखा हुआ है उसी से जीव का कल्याण होता है, उसी से हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रति अपनी श्रद्धा को बहुत दृढ़ बनाना है और इसमें दिए गए उपदेशों का पालन करना है और भगवान की कथाओं को अत्यंत ही श्रद्धा के साथ श्रवण करने की लालसा सदा बनाए रखनी है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, और अब मैत्रेय मुनि जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के विषय में बताना शुरू कर रहे हैं। वे कहते हैं, उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामि लिततृणमील्यत् अहीन्द्रतल्पे दिशयान एक कृतक्षण स्वात् मरतौ नरीह। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामि लितदिङ्यमील्यत् अहीन्द्रतल्पे दिशयान एक कृतक्षण स्वात् मरतो निरीह। उदाप्लुत यानी उद कहते हैं जल को, और आप्लुत मतलब डूबे निमग्न जल के अंदर, विश्वम यानी तीनों जगत। अब जब सृष्टि का लय होता है तो सारा विश्व जो है, तीनों जगत मतलब ऊपर के लोक, नीचे के लोक और पृथ्वी, ये सब जल के अंदर जब डूब जाते हैं तो इदम ना इस तदा यानी उस समय क्या होता है, आसीत या उसी तरह था, यत जिसमें निद्रया मतलब नींद में, अमीलित बंद की, द्रिंग मना आंखें, और नियमीलियत यानी पूरी तरह से बंद नहीं थी। अब उनकी आंखें कैसी थी, थोड़ी सी खुली हुई थी लेकिन बंद दिख रही थी, और वो कहाँ पर थे, अहिंद्र मतलब महान सर्प अनंत के, अनंत शेष जो है उनके ऊपर, तलपे यानी उनकी शैया बनी हुई थी, और उसके ऊपर अधिशायन यानी लेटे हुए थे, एक मतलब एकाकी कृतक्षण व्यस्त थे, स्व आत्मरतो अपनी अंतरंग शक्ति का आनंद। अभी वो शेषनाग की शैया जो कि जल के अंदर पूरी डूबी हुई थी, आधा ऊपर थे और उसके ऊपर वो आंखें आधी सी थोड़ी सी खुली हुई थी और आंखें मूंद के बैठे लेटे हुए थे, अपनी अपनी शक्ति का अधिशायन मतलब लेटे हुए थे और स्व आत्मरतो मतलब अपनी अंतरंग शक्ति का आनंद ले रहे थे, और निरीह यानी बहिरंग शक्ति के किसी अंश के बिना, क्योंकि बहिरंग शक्ति जो थी भौतिक जगत तो कुछ था ही नहीं, तो भगवान जो है वो आनंद से शेषनाग के सैया पर लेटे हुए थे और अंतरंग शक्ति में आनंदित थे। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं सृष्टि की रचना को, तो अभी बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, क्योंकि विदुर जी ने पूछा था ना कि भाई सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये तीनों विष्णु कैसे उत्पन्न हुए, विष्णु के विषय में तो बता दिया, अभी ब्रह्मा जी किस तरह से उत्पन्न होंगे वो सब बताया। तो अब अनुवाद देखिए, उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदक्षाय विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंग शक्ति में सोए लग रहे थे और बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थीं। आनंद तो ले रहे थे लेकिन सोए हुए नहीं थे, तो आनंद ले रहे थे और थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हुई थी। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंग शक्ति विराट जगत की लय के समय निलिम्बत कर दी जाती है। तो अंतरंग शक्ति जो है वो सदैव रहती है, लेकिन ये बहिरंग शक्ति कभी कभी प्रकट होती है, कभी कभी वापिस से भगवान उसको लय कर देते हैं। आगे कहते हैं, सोंता शरीरेर पितभूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्ति मोदीरयाण उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणि रुद्ध वीर्य। सोंता शरीरेर पितभूत सूक्ष्म कालात्मिकं शक्तिमोदीरयाण उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणि रुद्ध वीर्य। सोंत शरीर प्रति, सोंत मतलब स मन भगवान, अंत मन भीतर, शरीर मन दिव्य शरीर में अर्पित रखा हुआ, भूत यानी भौतिक तत्व, जितने भी जीव हैं वो सब एक दिव्य शरीर में रखे हुए, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म शरीर में, उनका जो ये जो ग्रॉस बॉडी है, जो उनका स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, वो तो प्रलय के टाइम पर समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ वो भगवान के दिव्य शरीर में रखे जाते हैं। और कालात्मिक काम यानी काल के स्वरूप शक्ति मन शक्ति उदीरणाय मतलब अर्जित करते हैं, समय की शक्ति प्राप्त अर्जित करते हैं, उवास निवास करते हैं, तस्मिन मना उसमें, सलिले यानी जल में, पदे यानी स्थान में, स्वे यानी निजी, यथा तरह जिस तरह अनल दारुणी रुद्ध वीर्य, अनल मन अग्नि, दारुणी मन लकड़ी में, रुद्ध वीर्य मतलब लीन शक्ति। अब लकड़ी के अंदर शक्ति होती है ना, जलने की शक्ति होती है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है मन बुद्धि अहंकार और आत्मा होते हैं, तो ये सब जो है वो सूक्ष्म शरीर जितने भी हैं वो भगवान के शरीर के अंदर वास करते हैं। अनुवाद देखिए, जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे, वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तीन लोक, ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए, तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों में पड़े रहे, उस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे। जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है, इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निषेध नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। अब एक तो पूर्ण प्रलय होता है, लेकिन अभी सारे सारी जो दूसरे लोग थे वो नष्ट नहीं हुए हैं, मतलब ये जो तीन लोग हैं वो नष्ट हुए हैं, और उसके बाद क्या है, सारी जितने भी जीव थे वो भगवान के अंदर लीन। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति पूर्णतया निषेध नहीं हुई, सारी शक्ति भगवान ने अभी तक निषेध नहीं की है, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय, एक दूसरा महाप्रलय होता है जो ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने पर होता है, तो वो अभी तक नहीं हुआ था। वो इसलिए ये जो है वो यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद ने, इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए किंतु सूक्ष्म शरीर स्थिर रहे, जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है। तो ये सूक्ष्म शरीर अभी नहीं लीन हुए थे, ठीक है, वो तो अभी भगवान के अंदर, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी वापस से इनको रचना करेंगे। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतंत्रो लोकानपति कालाक्षया साधितकर्मतंत्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे। सॉरी, चतुर्युगानां च सहस्रमाप्सु स्वपन स्वयोदीरितया सशक्त्या कालाक्षया साधितकर्मतंत्रो लोकान पीतान् ददृशे स्वदेहे। अर्थात भगवान अपनी अंतरंग शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेते रहे। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु, 4000 जो ये चतुर्युगी है तब तक भगवान जो है ना वो लेटे रहे, और अपनी बहिरंग शक्ति के जल के भीतर सोते हुए प्रतीत रहे। वो ऐसा लग रहा था कि भगवान अभी तक सोए हुए हैं, और जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। फिर क्योंकि इतने ही समय तक सारे जीव जो थे वो शांत थे, और फिर अब इतना 4000 चतुर्युगी हो गया, उसके बाद सारे जितने भी जीव थे वो काल शक्ति के द्वारा प्रेरित हुए और सकाम कर्मों के आगे विकास के लिए बाहर आ रहे थे, फिर भगवान ने देखा मेरा पूरा शरीर जो है वो नीले रंग का हो रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत्व संपत्ति छोड़ पाता है, तो वह अपने जीवन में अपने को अतीव चतुर समझता है, और इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य से भवबंधन की जंजीरों में से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंग शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव होती है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं जो काल शक्ति है उसका मतलब होता है, ये काल शक्ति का प्रभाव बहिरंगा शक्ति है, मतलब अविद्या है जो कि हमको भौतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा उत्साहित करने के लिए होती है। जिस तरह से हम देखते हैं संसार में सब लोग जो हैं वो यही सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। अभी बूढ़े हो गए ना, उनको तो इतने पैसों की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि भाई मैं 60 साल का हो गया हूँ, अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल रहूँगा तो मेरे लिए तो काफ़ी है, मैं सुख से। लेकिन उस टाइम पर भी वो जॉब करते हैं, अभी तक है ना पैसे कमाते हैं, उस टाइम पर सोचते नहीं कि मैं भगवान का नाम लूँ, और सोचते मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए बहुत पैसे जमा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि हम लोग कितने बुद्धिमान हैं, इतना धन कमा रहे हैं, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं। लेकिन इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखम उठाते हैं, वो पाप ही तो कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बस खाली जीवन में आहार निद्रा भाई मैथुन ही के लिए कार्य करते रहते हैं, कमाओ कमाओ, और इससे और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उससे भवबंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। क्योंकि जब तक भगवत भक्ति नहीं करेंगे तो ये बारंबार जन्म मरण के चक्कर में, तो इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं, यानी कि वो बहुत अपवित्र मनोवृत्ति के कारण वो नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव होती है। तो हमको जो सकाम कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा होती है तो ये भगवान की जो काल शक्ति है जिसके द्वारा हमको मिलता है। लेकिन भगवान की जो भगवान कहते हैं महात्मानस तो माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन पर ये माया ये काल शक्ति वो प्रभाव नहीं डालती है, और भगवान की दैवी शक्ति के आश्रण में होते हैं और भगवान उनको सदैव अपनी भक्ति की प्रेरणा दे रहे होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हृदय के साथ सिंसियरली भगवान की शरण में आना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ओ कृष्णा प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, आपकी माया शक्ति से मुझे बचाइए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ। और यही भगवान की शक्ति ने क्या किया, लोकान पीतान दृशे स्वे देहे, लोकान अपीतान, लोकान माना सारे जीवों को, जो सारे जीव जो हैं उनको प्रेरित करते हैं, और फिर अपीतान, अपीतान मतलब नीलांब, जो भगवान की नाभि है वहाँ से वहाँ पर नीला नीला हो गया, और ददृश्य यानी देखा स्वदेहे अपने शरीर में, भगवान ने देखा यहाँ से नीला नीला हो गया है। उसके बाद उस भगवान की नाभि से तस्यार्थ सूक्ष्मा विनिविष्ट दृष्टिर् अंतर्गतोर्थो रजसातनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशा तस्यार्थ सूक्ष्मा विनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतोर्थो रजसातनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धे सुष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशा तस्यार्थ सूक्ष्मा, तस्यार्थ उसका अर्थ मना विषय, सूक्ष्म मना सूक्ष्म, अभिनिविष्ट दृष्टि यानी जिसका ध्यान स्थिर किया गया था, उसका भगवान ध्यान में लगे हुए थे उस समय, अंतर्गत आंतरिक अर्थ मना प्रयोजन, रजसा यानी रजोगुण, तनीयान यानी अत्यंत सूक्ष्म, गुणेन यानी गुणों के द्वारा, काल अनुगते काल क्रम में विद्ध यानी क्षुब्ध किया गया, सुष्यन यानी उत्पन्न करते हुए, तदा तब अभिद्यता वेद दिया नाभिदेशात यानी उदर से। उस समय क्या हुआ, जैसे ही प्रेरणा मिली काल शक्ति से, सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका हुआ था, क्योंकि भगवान ध्यान में थे ना, आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी। तो अभी जिस पर उनका ध्यान भगवान का टिका हुआ था, सूक्ष्म जो विषय तत्व है उस पर, तो भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। अब उस समय भौतिक रजोगुण ने उसके ऊपर अट्रैक्ट किया तो वो विचलित हो गया। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर यानी नाभि से बाहर निकल आया। अब उनकी नाभि से सृष्टि का सूक्ष्म रूप, ये जो नाभि से भगवान की जो कमल की नाल निकल रही है ना, उसके विषय में बता रहे हैं कि सृष्टि का सूक्ष्म रूप निकल आया। फिर उसके बाद सारे लोक बनेंगे, इससे पर हम बताएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। आगे कहते हैं, तो पहले भगवान शांति से लेटे हुए थे, उनके अंदर सारे जीव थे। फिर जब काल के गुजरने पर सारे जीवों पे जो है वो काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ और भगवान के शरीर का जो नाभि कमल है वहाँ से नीला नीला हो गया। और फिर उस समय सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका हुआ था भौतिक रजोगुण द्वारा, वो विचलित होने लगा और इस तरह सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर यानी नाभि से बाहर निकला। और फिर आगे सपद्मकोश सहसोदतिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिशात सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोग्नि सपद्मकोश सहसोदतिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोचिशात सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनि। स पद्मकोश, स मन वो क्या निकल रहा था उनके उदर से बाहर, पद्मकोश मतलब कमल के फूल की कली, वो कमल के फूल की जो नाल थी वो उसमें निकल रही थी सहसा अचानक से। और उदतिष्ट प्रकट हुई काले न काल के द्वारा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रकट होने लगी। और कर्म यानी सकाम कर्म प्रतिबोध देना यानी जगाते हुए। और उसके बाद स्वरोचिष्टा, स्वरोचिषा का मतलब अपने ही तेज से तत् मना वो स्वरोच तत् सलिलम विशालम, सलिलम मतलब प्रलय का जल जो बहुत अपार था, विद्योतयन प्रकाश करते हुए अर्क यानी सूर्य इवमना सदृश आत्मयोनि यानी विष्णु से उत्पन्न। फिर क्या हुआ, उसमें से इतना सूर्य का तेज निकलने लगा कि जो प्रलय का जल था वो भी सूखने लगा। और ये आत्मयोनि यानी विष्णु से उत्पन्न हुआ था ये जो नाल है कवल की, और उसके अंदर जो प्रकाश था वो। अनुवाद देखिए, जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का रूप धारण कर लिया। फिर उसकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तो ये जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने, क्योंकि जीव जो है उन्होंने बहुत सारे सकाम कर्म किए थे, अब इतना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया, 4000 बार चतुर्युगी बीत गई। तो जो सकाम कर्म है वो काल क्रम से उन सब सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए, फिर ये सकाम कर्मों के कारण प्रेरित होते हुए भगवान विष्णु के नाभि से कमल की नाल निकली। और फिर उसमें से इतना सूरज की जो है ना चमकती हुई अलौकिक ऊर्जा निकलने लगी, प्रकाश निकलने गया, और फिर प्रलय के अपार जल को भी उसने सुखा दिया। आगे कहते हैं, तल्लोक पद्मं स एव विष्णु प्रावीविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं विहितमायो विधाता स्वयंभुवम्यं स्मवदन्ति सोऽभूत् तल्लोकपद्मं स उएव विष्णुं प्रावीविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं विदमाय विधाता स्वयं भुवं सयं स्म वदन्ति सोभु। अनुवाद देखिए, उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे हम स्वयंभुव यानी ब्रह्मा कहते हैं। तो ये जब नाल जो है वो ऊपर डंडी बढ़ती गई और भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया, मतलब सब कुछ उसके अंदर सारे लोक जो हैं वो उत्पन्न हो गए और फिर ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साक्षात वैदिक ज्ञान स्वयंभुवम यम स्म वदन्ति सोमभूत, जो स्वयंभू हैं ब्रह्मा जी हैं वो साक्षात वैदिक ज्ञान हैं वो उत्पन्न हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट हो जाता है। यह गर्भोदक्षाएं विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है और कमल पुष्पा से सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न होता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो कमल का फूल है वो भौतिक जगत के ब्रह्मांड का विराट रूप है और जब प्रलय होता है तो ये पूरा जो ये पूरी डंडी और उसके साथ ब्रह्मा जी का जो ये लोक है, ब्रह्मा जी स्वयं भी, वो सब उधर में घुस जाते हैं। उधर है जो विष्णु भगवान का यानी पेट है उसमें चले जाते हैं और सृष्टि के समय जब भगवान पुनः सृष्टि करना चाहते हैं तो प्रकट होते हैं। और ये गर्भोदक्षाएं विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाएं विष्णु होते हैं और उसके हर एक गर्भोदक्षाएं विष्णु के हर एक ब्रह्मांड का एक अलग ब्रह्मा जी होता है। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहारा रहता है और इस कमल पुष्पा से सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। इस परम प्रथम अद्भुत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता है, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं, अतएव यह स्वयंभू कहलाते हैं। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं क्योंकि ये इनका कोई पिता नहीं, बस कमल के फूल भगवान के नाभि से कमल का फूल निकलते हैं और ये उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम स्वयंभू होता है। प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाता है और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप सूक्ष्म हिरण्य गर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति यानी ब्रह्मा इन तीनों का बोध होता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो अभी बताया उससे स्थूल विराट रूप यानी कि जो विराट जगत है और सूक्ष्म हिरण्यगर्भ यानी जो भगवान की नाभि में सारे आकर भगवान विष्णु सारे जो जीव हैं वो आकर सुषुप्त अवस्था में होते हैं और फिर भौतिक सृजन यानी वापस से जब सृजन स्टार्ट होता है ब्रह्मा इन तीनों का बोध होता है। तो यहाँ पर इतना मैत्रेय मुनि ने बताया। अब आगे बताएंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान आदेश करते हैं कि आप इस सृष्टि का निर्माण करो, कृपया सब साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्णा।